शांति। ब्रह्मा तेरी कुर्बानी सबसे ऊंचा तेरा प्यार। तो जनवरी मास विशेष परमात्म प्यार में समय रहने का होता है। साकार रूप में परमात्म प्यार का अनुभव कराने के लिए ब्रह्मा बाबा हम सबको विशेष समर्थ समर्थियों से शक्तिशाली बनाते हैं। इस जनवरी मास में वैसे तो हर दिन जनवरी मास जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जीवन सदा काल का है, ना केवल जनवरी मास के लिए विशेष पुरुषार्थ करने का। लेकिन फिर भी समय का विशेष महत्व होता है। तो इस तपस्या मास में सभी अटेंशन दे रहे होंगे अपनी अपनी उन्नति के लिए। जैसे कल बाबा ने कहा था कि उन्नति का साधन क्या है, कल की मुरली में था ना, परसों की मुरली में, उन्नति का साधन क्या है चाइल्ड, और क्या है उन्नति का साधन, याद नहीं, परसों विशेष बताया था, बल है, कोई बल, आशीर्वाद का बल, परसों की मुरली में था ना, आशीर्वाद का बल उन्नति का साधन है। तो हम सब ब्राह्मणों की एक आंतरिक सूक्ष्म इच्छा तो बनी रहती है कि किसी न किसी तरीके से हमारी दिन प्रतिदिन प्रगति होती रहे, हम निर्बंधन बने, हल्के होके उड़ते रहें, अव्यक्त फरिश्ता बनकर इस ब्राह्मण जीवन की अलौकिक मौज का अनुभव करें, जो मजे का जीवन, जैसे बाबा ने 18 जनवरी की मुरली में बताया। ये ब्रह्मा बाबा का जीवन कैसा था, जीवन मुक्त मजे का जीवन था। तो हम भी उसी बाप के बच्चे हैं, तो बाबा भी हम सबको जीवन मुक्त मजे की अवस्था में देखना चाहते हैं। बाबा कहते पुरुषार्थ तो बच्चे करते हैं, अटेंशन रखते हैं, लेकिन कभी कभी सदाकाल नहीं। बाबा सदाकाल का अटेंशन पसंद करते हैं, सदाकाल का पुरुषार्थ करते करते हम बाबा निरंतर योगी जीवन हमारा देखना चाहते हैं। बाबा ने कहा था कि स्किल दे बच्चे कौन है, 18 जनवरी की अव्यक्त वाणी जो थी, स्किल दे बच्चे कौन है, कौन है स्किल दे बच्चे, हम सब हैं। और उत्तर के बाबा ने क्या बताया था, हैं तो हम सब हैं, लेकिन उसमें विशेष किस बात से बाबा ने हम सबको बताया था, क्या निशानी होगी उनकी, वफादार वो आज का था, क्योंकि ये ज्ञान जो ना हाथ से खिसक जाता है, जब तक ज्ञान का बल हमारे अंदर नहीं है तब तक जीवन में वो हमारी प्रगति महसूस नहीं होगी। और ये ज्ञान भी पारे की मिसल ही है, खिसक जाता है। ये भी सुनते हैं, सुनते सुनते सुन हो जाते हैं फिर। तो कौन सी बात बताई थी बाबा ने, अव्यक्त मूल्य लास्ट पैराग्राफ था वो सारी मूल्य का सार था उसमें, 18 जनवरी की अव्यक्त मूल्य सुनी ना सभी ने शाम के टाइम में। तो क्या था? मुरली से प्यार। जिन बच्चों का मुरली से प्यार है तो बच्चे तो कहते हैं बाबा से बहुत प्यार है, मुरलीधर से प्यार है, लेकिन मुरली से प्यार नहीं है तो कौन मानेगा? तो मुरली में जो सब समस्याओं का समाधान होता है, बाबा ने कहा किसी भी तरीके से मुरली मिस नहीं होनी चाहिए, मुरली मुरली और मुरली, क्योंकि मुरली एक ऐसा माध्यम है, ऐसी लाठी है जो सब समस्याओं की पिटाई करके हम सबको किनारे लगा देती है। मुरली एक रास्ता दिखाने वाली है, जीवन में खुशी भरने वाली है, लेकिन हम उसका उपयोग करेंगे तो। अगर हम उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो फिर कैसे होगा? वो दवाई का काम करती है, बीमारी हमको क्रॉनिक लगी हुई है और दवाई हम खा नहीं रहे हैं तो ठीक कैसे होंगे? तो मुरली के प्रति बहुत अटेंशन रखना जरूरी है। सब समस्याओं का समाधान है, एकमात्र समाधान मुरली में ही सब मिल जाता है उसमें, लेकिन हमारा अटेंशन कहीं ना कहीं छूट जाता है, खिसक जाता है ज्ञान। रोज हम मुरली सुनते हैं, कितना ज्ञान सुना होगा, लेकिन कितने पॉइंट हमारी बुद्धि में है? क्योंकि कल को ऐसा भी समय आएगा कि मुरली हमारे सामने नहीं होगी, ना कोई सुनाने वाला होगा, ना कोई साधन होंगे। उस समय हमारे बुद्धि में जो है वो ही काम में आएगा हमारे। और वो लंबे समय से अगर हमने उन ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि में संजोने का अभ्यास किया है, उनको बार बार रिवाइज किया है, उन ज्ञान रत्नों को अपनी बुद्धि रूपी झोली में संजो कर रखा है, उनके ऊपर चिंतन किया है, मंथन किया है, उनको अपने संस्कारों में बसाया है, वो हमारा स्वभाव बन चुके हैं, तो वो स्वतः काम करेंगे। नहीं तो सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाएगा, फिर जीवन में इतना बदलाव नहीं होगा। चल रहे हैं ठीक है, लेकिन एक निरंतर जो खुशी है, एक जो ऊर्जावान जीवन का अनुभव महसूसता है, वो नहीं होगी फिर। तो इसके लिए मुरली के ऊपर बहुत अटेंशन रखना जरूरी है। सभी ने अनुभव किया होगा, जिस दिन अच्छी तरह से मुरली सुनते हैं, थोड़ा चिंतन करते हैं और उस चिंतन के आधार पर हम योग में बैठते हैं तो कितना अच्छा लगता है। और बिना ज्ञान के, बिना लक्ष्य के अगर हम योग में सीधा बैठ जाते हैं तो सारा टाइम भारी भारी अवस्था में बीत जाता है। पहले से हम कुछ अपना प्लानिंग करके बैठते हैं तो फिर कुछ हाथ में लगता भी है, रिस्पॉन्स उसका मिलता भी है। इसलिए मुरली के प्रति जो हमारी लापरवाही है, स्वयं के ऊपर स्वयं, जो स्वयं का आशीर्वाद, सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो स्वयं का आशीर्वाद है। बाबा का आशीर्वाद तो है ही, लेकिन एक स्वयं का आशीर्वाद, अपने आप का आशीर्वाद, हम कहाँ तक उसको ले पाते हैं? और अपने आप का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? आत्मसंतुष्टि से, जो हमें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। जैसे कल भी बताया ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने, कि लंबे समय से भारत में एक बुराई घर कर गई है हर इंसान के अंदर। कौन सी? कौन सी बताइए? कि अपने कर्तव्यों के विमुख हो गया इंसान। अधिकारों के लिए तो हम लड़ते हैं, अधिकारों की लड़ाई के लिए हर मनुष्य अपना खूब बखेरा खड़ा करते हैं, लेकिन जब कर्तव्य की बात आती है तो अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। जैसे देश हमारे लिए नहीं है, हम देश के लिए हैं। यज्ञ हमारे लिए नहीं है, हम यज्ञ के लिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उल्टा हो जाता है। कहीं हम सोचते हैं कि यज्ञ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी पूरी करे, हमारी जिम्मेवारियों को पूरी करे, हमारी सुरक्षा करे, ये उल्टा काम है। हम यज्ञ के लिए क्या कर रहे हैं? हम यज्ञ के लिए हैं, ना कि यज्ञ हमारे लिए है। भगवान ने हमको चुना है यज्ञ के लिए। ऐसा नहीं कि यज्ञ तो पालना करेगा करे। आज बाबा ने बताया ना, तुम्हें सर्विस का शौक होना चाहिए। सर्विस का शौक है तो बाप तुम बच्चों को किट बनाकर दे देंगे, वो बड़ी बात नहीं है। सर्विस की हॉबी होनी चाहिए, कल की मुरली में था, शौक होना चाहिए। लेकिन हमारे शौक कहीं ना कहीं दूसरी बातों में तब्दील हो जाते हैं, रास्ता हम भटक जाते हैं। और उसमें बहुत सारी बातें होती हैं, अटेंशन की कमी है या संग ये संभालनी होती है, या हमारे अपने ही कमज़ोर पुराने स्वभाव संस्कार हैं, या कोई पुरानी आदतें हैं जो फिर से जागृत हो जाती हैं, क्योंकि हमने बारीकी से उस पर काम करना शुरू नहीं किया है। जब तक हमने अपने आप को बारीकी से अपना निरीक्षण नहीं किया, अपने को जांचा नहीं है, अपनी बुराइयों छोड़ने का संकल्प नहीं किया है, तब तक हमारी प्रगति नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी। इसलिए स्वयं का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है, अपने अंतर्मन की आवाज़, कि जिस अंतर्मन से हम भक्ति मार्ग में भगवान को पुकारते थे, उसकी इतनी महिमा करते थे, प्रार्थनाएं करते थे, उसके लिए यात्राएं करते थे, भक्ति पाठ पूजा करते थे, क्या वो आत्मन की पुकार कहीं दब तो नहीं गई है? भक्ति में भावनाएं बहुत ऊंची होती है, लेकिन ज्ञान में उन भावनाओं को बनाए रखना वो भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। नहीं तो ज्ञान में कहीं ना कहीं सूखा पाना जाता है, भावनाएं किनारे रह जाती हैं। शुभ भावना, शुभ भाव और भावनाएं, कल के वरदान में था ना, पांच प्रकार की भावनाएं, कौन सी? कल्याण की भावना, रहम की भावना, आत्मिक भावना, अपने मन की भावना, शुभ भावना। तो पहले स्वयं के प्रति, तो स्वयं का आशीर्वाद, एक आत्म संतुष्टि होनी चाहिए अंदर से, जो अंतर मन की आवाज़ है कि हमारा बदलाव होना चाहिए, हमारे संस्कार बदलने चाहिए, हमारी दृष्टि बदलनी चाहिए, हमारे जो पवित्रता उसमें वृद्धि होनी चाहिए, इजाफा होना चाहिए, वो ग्राफ बढ़ना चाहिए धीरे धीरे, कर्मेंद्रियाँ शीतल होती जानी चाहिए। तो क्या ये हम अपने आप को सर्टिफिकेट देने में दिन प्रतिदिन सक्षम होते जा रहे हैं, या कहीं स्वयं की कमजोरियों को दबा के तो नहीं रखा हुआ है? अपने आप को तो नहीं हम ठगते जा रहे हैं, अपने आप से धोखा करते जा रहे हैं? अपनी कमी कमजोरियों को छिपा के रखा हुआ है, और वही कमी कमजोरियां भूत बन के हमारे सामने आएंगी। कल बाबा ने बताया था ना, वो भूत कुछ नहीं करते, भूत तो पांच विकारों के भूत हैं, और वो सबसे खतरनाक है, और वो बाहर नहीं, वो हमारे अंदर ही है। तो छूटना तो उनके उनसे है, क्योंकि हमारा सारा पुरुषार्थ गुप्त पुरुषार्थ है, दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं है। तो इस गुप्त पुरुषार्थ के लिए स्वयं की पहनी नज़र चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बच्चों की दूर की नज़र तेज है, लेकिन नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। अर्थात दूसरे की कमी कमजोरियों का चिंतन करना तो आता है, वो दिखाई दे देती है, उनका वर्णन भी करेंगे, उनका विस्तार भी करेंगे, उनको समझाने का प्रयास भी करेंगे, सुधारने के लिए भी बोलेंगे, लेकिन अपने आप को कहाँ तक पढ़ाते हैं? सारा जो काम है वो स्वयं के ऊपर करने का पुरुषार्थ है सारा। वो स्वयं के ऊपर कितनी नज़र रखते हैं हम? तो सबसे पहला आशीर्वाद, उन्नति का साधन, स्वयं का आशीर्वाद। दूसरा है बाबा का आशीर्वाद, है ना? तो स्वयं, ये जो सारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों महसूस करने हैं, है ना? रोज अमृत वेले उठते हैं, एक तो बाबा के वरदानी हाथ आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर हो, दूसरा स्वयं का भी आशीर्वाद का हाथ हमारे सिर पर हो, है ना? और हमारे स्वयं का जो संपूर्ण रूप है उसको हम सामने इमर्ज करके, उसमें जो सारी विशेषताएं हैं, उसमें जो सारी योग्यताएं हैं, उसमें जो सारी कलाएं हैं, उसमें जो सारे गुण हैं, उसमें जो सारी शक्तियां हैं, उसमें जो संपूर्ण प्योरिटी है, वो संपूर्ण रूप देखते हुए उसका भी आशीर्वाद हमको अनुभव करना है, अपने ही संपूर्ण रूप का। क्योंकि है तो हमारा सबका संपूर्ण रूप तो है ही है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है। बाबा ने तो हम वरदान दे दिया ना कि जैसे ब्रह्मा बाबा ऐसे तत्व हम, तुम भी वैसे ही हो। तो स्वयं का आशीर्वाद, दूसरा बाबा का आशीर्वाद, और बाबा का आशीर्वाद आज की मुरली में था। अगर बाबा का आशीर्वाद अर्थात बाप का नाम बाला करना है तो क्या चाहिए? तीन बातें थी प्रश्नोत्तर में, ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई। तो हम कितना बाबा के साथ ईमानदार रहते हैं, अर्थात उसकी पढ़ाई के प्रति कितना ईमानदार रहते हैं, उसकी आज्ञाओं के प्रति कितना ईमानदार रहते हैं, उसकी सेवा के प्रति कितना ईमानदार रहते हैं, कितना सच्चाई सफाई है, या अंदर एक है बाहर कुछ दूसरा है। तो बाबा का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। बाबा की जो श्रीमत है, ढेरों श्रीमत है, एक श्रीमत नहीं है, और हर एक चीज की जो श्रीमत है अपने अपने हिसाब से अलग अलग हो सकती है। है तो सबके लिए एक जैसी है, लेकिन फिर भी जैसे कोई घर गृहस्थ में रहते हैं तो उनके लिए अपनी श्रीमत है, कोई निर्बंधन है उनके लिए अपनी है, मधुबन में तो उनके लिए अपनी है। जैसे आज के मुरली में था, भोजन की बात थी, है ना? तो भोजन की बात थी, तो घर में रहते हुए जो सर्विस करते हैं, अपने हाथ से भोजन बनाए तो कितनी ताकत वाली बात है, ताकत मिलेगी। लेकिन यहाँ वो चीज़ लागू नहीं होती है, है ना। तो ऐसे श्रीमत, जितनी भी हजारों बाबा की श्रीमत है, उन श्रीमत के अनुसार हम अपने जीवन को कितना आचरण में ला रहे हैं, वो श्रीमत हमारी अपनी कहाँ तक बनी है। तो बाबा का आशीर्वाद भी डेली चाहिए हमको। तो ऐसे निकाल सकते हैं बाबा की श्रीमत, बाप के रूप में कौन सी है, टीचर के रूप में कौन सी है, गुरु के रूप में कौन सी है, साजन के रूप में कौन सी है, सखा के रूप में कौन सी है, भाई के रूप में कौन सी है। ऐसे सर्वसंबंध श्रीमत का पालन हम कहाँ तक करते हैं, कहाँ तक हम उस पर खरा उतर पाते हैं। तो बाबा का आशीर्वाद भी चाहिए उसमें। फिर टीचर पढ़ाई कितना तवज्जो देते हैं, उसके ऊपर कितना ध्यान देते हैं, कितना पढ़ाई से हमारा प्यार है, है ना। जो बाबा कहते हैं एक दिन भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। चलो कारण हम मुरली क्लास में नहीं पहुंच पाते हैं, या सेवाओं की जिम्मेवारी है, या कहीं मेहमान अचानक आ जाते हैं, कुछ है, लेकिन फिर भी व्यक्तिगत रूप से जब भी मौका मिले दिन में, तो पूरे प्यार से हम मुरली को कितना पढ़ते हैं, कितने उसको ग्रहण करते हैं, उस पर कितना मनन चिंतन करते हैं, उन ज्ञान रत्नों को कितना इकट्ठा करके अपने बुद्धि रूपी झोली में भरते हैं, है ना। क्योंकि जो बाबा ने कहा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। डिस्टर्ब होता क्यों है, क्योंकि हमने अपने मन में डिस्टर्ब करने वाली बातें भर के रखी हुई है ना। 18 तरीके मुरली में बाबा ने कहा एक घंटा अगर योग में बैठे तो मन डिस्टर्ब ना करे, ऐसा ऑर्डर मन को दो। तो मन डिस्टर्ब होता क्या हो, क्योंकि हमने बातें भर के रखी हैं, अपने आप थोड़ा तो मन डिस्टर्ब करने वाली बातों को हमने पकड़ के रखा हुआ है। और जिन बातों से डिस्टर्ब होते हैं, उन बातों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बाबा ने अनेकों विधियाँ दी हैं, उन विधियों को हम यूज़ नहीं करते हैं और वो फिर बातें डिस्टर्ब करती रहती हैं। तो मन जो एक इस मन रूपी बर्तन में हमने क्या क्या भर के रखा हुआ है, जो भर के रखा वो ही तो छलकेगा ना, है ना। तो बाबा के आशीर्वाद की भी बहुत हर कदम कदम पर जरूरत रहती है। तो देखना है कि बाबा के आशीर्वाद को भी हम जीवन में कितना आत्मसात कर रहे हैं, आशीर्वाद का बल दुआएं। पिछले संडे के मूल्य में था जादू मंत्र, कौन सा था, 3 प्रकार के जादू मंत्र थे, शुभ भावना, शुभ कामना और शुभ दुआएं। ये जादू मंत्र का काम करती हैं। तो दुआएं अर्थात आशीर्वाद। तो पहला है स्वयं का आशीर्वाद, दूसरा बाबा का आशीर्वाद, ये बल है, ये हमारी उन्नति के सारे साधन हैं। और तीसरा है ब्राह्मण आत्माओं का आशीर्वाद। हर एक की दृष्टि में हमारे प्रति दृष्टिकोण है वो कैसे अच्छा बना रहे। एक है बाहर बार से, दूसरा है कि दिल से सामने वाले दुआएं दे, वो कैसे मिलेगी, सबको उसमें पर सहयोग देकर, या सबके साथ अच्छा व्यवहार, सबके साथ हमारी सम दृष्टिकोण, कोई ऊंचा बड़ा नहीं, सब बराबर है, एक बाबा के बच्चे हैं। हाँ, सम्मान देने के हिसाब से अलग है, जहाँ जिसको देना वो तो देना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कोई नया भाई या नई बहन आई है या कोई गांव वाला भाई आया है तो उसे हम बिल्कुल किनारा बना के रखें या उससे ओम शांति नहीं करें, बोले नहीं, क्योंकि कौन सी आत्मा किस रूप में कहाँ पहुँच जाएगी कोई भरोसा नहीं है, फाइनल तो हुआ नहीं अभी, है ना। किस विचारों को लेकर कौन कौन सी आत्मा चल रही है और कौन सी आत्मा के विचारों का जो प्रभाव है वो वायुमंडल को शक्तिशाली बना रहा है, किसकी प्योरिटी कितनी ऊंची है, ये बाहर से देखने में थोड़ा नहीं आता है, अंदर ही अंदर, भले कोई भोले वाले देखने में लगते हैं, लेकिन ऐसी कई बार महसूसता होती है कि बहुत ऊंच पुरुषार्थ है, बहुत आगे पुरुषार्थ है उनका, भले देखने में भोले वाले लगते हैं। तो ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण आत्माओं का आशीर्वाद भी बहुत जरूरी है। बोले बोले गांव की माताएं आती हैं, लेकिन इतना सरल स्वभाव, इतना अंदर बार पारदर्शी, साफ दिल, प्योरिटी की झलक, वो अपनेपन की भावना, वो शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, बेहद के बोल होते हैं उनके, तो साधारण आत्मा कोई भी नहीं है। ब्राह्मण आत्मा माना भगवान के नजरों में समाई हुई आत्माएं हैं। एक एक आत्मा बाबा कितना ग्रंथ लिखे जाए तो कितने बन जाए, पता नहीं कौन से त्याग तपस्या के बल पर उन्होंने अपने जीवन को भगवान के हाथों में सौंपा है, वो हमको पता तो नहीं चलता है। हर ब्राह्मण आत्मा का त्याग तपस्या, उनकी जो जीवन गाथा है, कितने संघर्ष करने के बाद बाबा का हाथ पकड़ा उन्होंने, है ना। तो हर ब्राह्मण आत्मा का भी आशीर्वाद चाहिए। तो हमारा जीवन निर्विघ्न होता जाएगा। तो तीसरा है ब्राह्मण आत्माओं का आशीर्वाद, फिर चौथा है लौकिक बालों का भी आशीर्वाद, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उन आत्माओं को भी संतुष्ट करना बहुत अनिवार्य है, और उनकी मेंटेलिटी को परखना, जांचना, समझना, उनके साथ मिलकर चलना। नहीं तो होता तो ये है कि हम अपने ज्ञान में तो चल पड़ते हैं, लेकिन उनकी बातों को फिर सुनते कम है, फिर उनको भी क्या लगता है ये बीके वाले ऐसे ही हैं। तो उनके साथ भी मिलकर चलना बहुत बड़ी एक कला है ये, है ना। जैसे बाबा है, बाबा ने इतने बड़ी बार परिवार को लेकर चले, इतने बच्चों को सिंध, हैदराबाद, पाकिस्तान से लाए, सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने, है ना, सबकी सोच अपनी अपनी, सबके शरीर के हिसाब भी अपने अपने। फिर समय पर जो व्यवस्थाएं यज्ञ की बदलती गई, उस समय विचार भी बदलते गए भाई बहनों के, और कई तो फारकती भी दे के चले गए, लेकिन बाबा कैसे अचल अडोल स्थैर्यम रहे, सबको मिलाकर कैसे चले, अपनी अवस्था को नीचे नहीं गिराया। तो ऐसे परिवार में, तो लौकिक परिवार में हम रहते हैं, ऊंचा नीचे तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से उनको कोई ठेस ना पहुंचे। अपने संस्कार से भले कोई कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हमारी ओर से उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आज बाबा ने कहा ना, तुम्हारी अवस्था किसके मिसल स्थैर्य में होनी चाहिए, आई की मुरली में था, अंगद नहीं है, तो अंगद का मिसाल है, लेकिन दूसरा था आज मुरली में, कौन, हनुमान जी। हाँ, हनुमान मिसल स्थैर्य में होनी चाहिए। तो जीवन में परिस्थितियां तो आएंगी, लौकिक में भी आएंगी, क्योंकि लौकिक में हम जब चलते हैं तो हमारा मार्ग बदल जाता है, थोड़ा खाना पीना चेंज हो गया, दृष्टि वृत्ति चेंज हो गई, बोलना चेंज हो गया। अब लौकिक में रहते हैं तो उनके बोल तो संसार की तरह होंगे, और हमारे बोल तो बदल गए अभी, और वो अच्छे नहीं लगते हैं, तो क्या करेंगे, वहाँ एडजस्ट करना पड़ता है बिल्कुल, है ना, एकदम अच्छे मन को भाते नहीं है वो, क्योंकि हमारे तो ओरिजिनल संस्कार ही और बदल गए ना एक, तो हमारा जो संकल्पों का भोजन है वो अलग हो गया, उनके संकल्प अलग अलग है, वो अपने तरीके से गप्पे मारेंगे और हमको बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे माहौल में रहना ये भी बहुत बड़ी साधना है, कम बात नहीं है। लौकिक में बीके बनकर रहना बहुत बड़ी साधना है, ये साधारण बात नहीं है, है ना। तो लौकिक वालों का आशीर्वाद भी चाहिए, जहाँ तक हो सके हम उनको एडजस्ट करके अपने इस जीवन में उनको इस जीवन का अनुभव कराएं, खुशी का। ऐसा नहीं है कि हम उनके साथ रहते रहते सूखे रूखे बन जाएं, और रिस्पॉन्स दें उनकी बातें, लेकिन युक्ति युक्त तरीके से, ताकि उनको भी अंदर में रंजना हो कि हमारे से दूरी बनाते जा रहे हैं। रिश्तों में दूरियां नहीं आनी चाहिए, बल्कि मिठास बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि राजयोग के माध्यम से हम क्या सिखाते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। तो अगर जीवन जीने की कला सिखाने, तो उनको हमारे जीवन से तो कुछ प्राप्ति होनी चाहिए ना। जैसे हम बाबा से असंख्य प्राप्तियां करते हैं, महसूस करते हैं, रियलाइजेशन करते हैं, तो ऐसे ही उन लोगों के सामने तो बाबा ने हम सब बच्चों को निमित्त बना के आगे रखा हुआ है, तो कम से कम उनके जीवन में भी थोड़ी खुशी की तो लहर आनी चाहिए। खुश नसीबी की झलक, आज के स्लोगन में था ना, खुश नसीबी की झलक, तो उनको खुशी देगा कौन, क्योंकि बाबा ने कहा तुम भी मुक्ति जीवन मुक्ति दाता के साथ तुम भी मास्टर मुक्ति दाता हो, तो उनको कौन मुक्त करेगा, वो जिम्मेवारी किसके ऊपर है, हम सब आत्माओं के ऊपर है। तो पहले हम स्वयं को ही मुक्त कर ले सब बुराइयों से, तो ताकि उनको भी उस अवस्था का अनुभव करा सके। तो लौकिक बालों का भी आशीर्वाद बहुत बड़ा काम कर सकता है हमारे जीवन को निर्विघ्न बनाने के लिए। तो ये चौथा आशीर्वाद था लौकिक बालों का। फिर पांचवा आशीर्वाद किसका होगा, प्रकृति का आशीर्वाद, क्योंकि जिस प्रकृति में हम रहते हैं, इस प्रकृति ने हम सबको कितना दिया है, सतयुग से लेकर अंत तक कभी देती आ रही है। ये शरीर प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, और इन प्रकृति के तत्वों का पोषण करने के लिए वो प्रकृति से ही हम लेते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन के रूप में ले रहे हैं, चाहे वो खाने पीने के लिए रूप में ले रहे हैं, जल के रूप में ले रहे हैं, पृथ्वी से ले रहे हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, कितना पालना हो रही है। आज तक हमने कितना कुछ खा पी लिया होगा, अगर ढेर लगा के देखा जाए तो कितने फल खाए होंगे आज तक, इतनी रोटियां खाई होंगी, क्या क्या खाया होगा, तो किसने पालना की हमारी, तो सब हमारा हिसाब किताब सूक्ष्म रूप से प्रकृति के साथ भी है। इसलिए बाबा कहते ना, प्रकृति को कैसे, उसको क्या ज्ञान कैसे सुनाएंगे, मनसा से, मनसा साकार से, तो वो तब होगा जब हम उस प्रकृति से हम प्यार करना सीखेंगे। प्रकृति के प्रति हमारा कोई नेगेटिव भाव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव भाव अर्थात जैसे सर्दी है, गर्मी है, ये सब चीज़ें तो आती आती हैं, सदियों से चली आती आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर इनके प्रति हमारी हीन भावना नहीं होनी चाहिए, गिल्ट कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए कि आज तो बहुत ठंड है, कम होनी चाहिए, आज तो बहुत गर्मी हो गई है, इतनी नहीं होनी चाहिए, दोष देते हैं हम प्रकृति को। तो सूक्ष्म रूप से प्रकृति के प्रति हम उल्टा सोच रहे हैं, ये और ये उल्टी सोच हमारे स्वास्थ्य को ही प्रभावित करेगी। हर चीज़ का एंजॉय लेना है। जो लोग बर्फ़ में रहते हैं उनको ठंड नहीं लगती है, उनको भी तो लगती है ना, और ठंड लगती है तो इतने सारे कपड़े व्यवस्थाएं सारी हैं, तो उनके प्रति हमारा नेगेटिव दृष्टिकोण, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हर चीज़ का एंजॉय लेना है, तो प्रकृति से भी आशीर्वाद मिलेगा, नहीं तो उल्टे रूप से हमारा ही स्वास्थ्य प्रभावित होता रहेगा। और साफ सफाई रखें, हम जिस वातावरण में हम रहते हैं उसको स्वच्छ रखें। मंदिर में जाते हैं, कितनी स्वच्छता होती है, तो ये भी प्रकृति ने हमको एक मंदिर दिया हुआ है, देहरूपी मंदिर। इस मंदिर को भी अपना बहुत स्वच्छ रखना है। इस मंदिर के आत्मा रूपी मूर्ति जो विराजमान है, उस मूर्ति को हम कौन से संकल्पों का भोजन ग्रहण करा रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव? प्रकृति भी हमको फिर वैसा ही देगी, फिर हमारा ही पेट खराब होगा। इसलिए प्रकृति को ही साकाश देना, प्रकृति से प्यार करना सीखना है। ऐसे बहुत सारी टेक्निक है संसार में जो प्रकृति से प्यार करने के बहुत अनेक तरीके हैं। लोग जाके जंगलों में जाके पेड़ों को ऐसे प्यार करते हैं, वो पेड़ की सारी एनर्जी अंदर आती है ऐसे। सूर्य को प्यार करते हैं, जैसे वो सूर्य को अर्ध्य क्यों देते हैं संसार में, जो भक्ति मार्ग की इतनी परंपराएं बनी है, क्यों बनी है? ऐसे थोड़ी ना, उनके वैज्ञानिक प्रमाण है सारे, ऐसे थोड़ी परंपराएं बनी है सारी वो। तो हम उनको निग्लेक्ट ना करें, बल्कि सूक्ष्म रूप से हम उनको सहयोग दें, उनसे प्यार करें, उनकी पालना करें, उनको साकाश दें, अच्छी तरह शक्ति परमात्म शक्तियों का साकाश देते रहें, प्योरिटी का साकाश देते रहें, तो अपने वाइब्रेशन जो ना वाइब्रेशन शक्तिशाली बनाने हैं। क्योंकि दिन प्रतिदिन हम सबकी जो सेवाएं हैं वो सूक्ष्म रूप से सूक्ष्मतर होती जाएंगी, क्योंकि वाणी से बाबा कहते कहाँ तक सुनाएंगे, लेकिन मनसा सेवा को कोई रोक नहीं सकता है। और मनसा हमारी इतनी शुद्ध, इतनी पवित्र, इतनी ऊंची होनी चाहिए कि ताकि सोचा और सेकंड में, बाबा ने कहा ना पिछले संडे की मुरली में था, एक सेकंड में अपनी पवित्रता के बल से तुम संसार की सब आत्माओं के विकर्मों को भस्म कर सकते हो। कितना बड़ा ये स्टेटमेंट है, एक सेकंड में तुम अपनी पवित्रता की शक्ति से संसार की अनेक आत्माओं की अपवित्रता को भस्म कर सकते हो। तो हमें अपनी प्योरिटी का लेवल कितना बढ़ाना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, कितना सोचना पड़ेगा उसके ऊपर, तो स्वयं के ऊपर कितनी नज़र रखनी पड़ेगी, कितने अंदर प्योरिटी के वाइब्रेशन कितने फुल होने चाहिए। सोचा और काम हुआ, सोचा और काम हुआ, जैसे स्विच ऑन किया अंधकार गायब, ऑफ किया तो अंधकार, ऐसे ही संकल्प का स्विच ऑन किया, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, और प्रकाश एक सेकंड में पूरी सृष्टि में समा गया, पूरे प्रकृति में समा गया, पूरी ब्राह्मण आत्मा में समा गया। तो ये भी प्रकृति का आशीर्वाद, ये भी बहुत जरूरी है। और किसका आशीर्वाद? जो संसार में आत्माएं भटक रही हैं, तड़फ रही हैं, उनका आशीर्वाद कैसे लेंगे, जिनको शरीर नहीं मिल रहा है। कितने लोग असमय अपना शरीर छोड़ देते हैं, कहाँ भटक रहे हैं वो, तो उनको भी साकाश देना जरूरी है। बेचारों को शरीर नहीं मिल रहा है, कितने तड़फ रहे होंगे वो, घुस जाते हैं एक दूसरे के शरीर में भी, और ऐसे बहुत सारे केस सुनने में आते हैं। तो जब तक बाबा के साथ हम जुड़े हुए हैं, बाबा के छत्रछाया में बैठे हैं, बाबा के साथ द्वारा, तो उन आत्माओं को भी साकाश देते रहना है, और वो सूक्ष्म रूप से जो आशीर्वाद मिलेगा वो हमें बहुत जल्दी निर्विघ्न बना देगा, शक्तिशाली बना देगा। अगर अभी हमने उन आत्माओं को ऐसी सेवा नहीं की उनकी, तो अंत में वो आत्माएँ हमारे आगे पीछे पड़ेंगी, हमारे लिए वो विघ्न बन जाएंगी, क्योंकि हमारे कर्तव्य हैं। इसलिए अपने जो ब्राह्मणों के कर्तव्य, जिन कर्तव्यों से हम विमुख होते हैं, उनकी अपने आप सूची बनानी चाहिए कि किन किन कर्तव्यों से हम विमुख होते जा रहे हैं। जो कर्तव्य भगवान ने हमको सौंपे हैं, उन कर्तव्यों पर हम कहाँ तक खरा उतर पा रहे हैं। तो अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा जागरूक रहना है, कौन कौन से कर्तव्य हैं, समय की पुकार कौन सी है, प्रकृति क्या पुकार कर रही है। तो ऐसे दुखी परेशान जो आत्माएं हैं, भटकती तड़फती आत्माएं हैं, उनको भी सकाश देना, उनका आशीर्वाद का बल जमा करना है, ताकि ढेरों सारे आशीर्वाद हमारे जीवन को निर्विघ्न, ना केवल हमारे जीवन को बल्कि संपूर्ण ब्राह्मण परिवार को इतना निर्विघ्न बना दे कि वो सारे संसार का जो कल्याण करने के निमित्त बाबा ने जिम्मेवारी सौंपी है तो उसको हम सुचारू रूप से पूरा कर सके। और ये सब सूक्ष्म रूप से, क्योंकि वाणी की सेवाएं तो बहुत करते आ रहे हैं, लेकिन जो सूक्ष्म स्तर की सेवाएं हैं जिसके लिए बाबा हर बार कहते हैं मनसा सेवा करो, तो ये व्यक्तिगत रूप से स्वयं के ऊपर पूरा नजर रखने की जरूरत है। तो ये था किसका आशीर्वाद, भटकती और तड़फती आत्माओं का आशीर्वाद, और फिर किसका, रोगी आत्माओं का आशीर्वाद, जो संसार में इतने सारे हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोरोना काल में कितनी परिस्थितियां आती हैं लोगों के पास, उपचार करने के लिए पैसा नहीं होता है, कितनी समस्याएं आती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में चले जाते हैं, बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते हैं, कितने परिवार परेशान हो जाता है, तो उन आत्माओं को कौन शक्ति देगा। बाबा ने कहा ना, तुम सृष्टि के क्या हो, बीज रूप हो, तो उस बीज रूप अवस्था में बैठ के उन आत्माओं को भी शक्ति का बल देना है, ताकि उनमें थोड़ा, आज बाबा ने कहा ना, निर्भयता की शक्ति होनी चाहिए, तो उन आत्मा में बल भर जाए, वो कुछ सहन करने की शक्ति आ जाए, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म मशीनरी है ये। तो मेडिटेशन में जब भी हम बैठते हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं, तो अपनी एक प्लानिंग बनानी है, ताकि एक एक सेकंड हमारा जो है वो वेस्ट ना चला जाए। कम से कम जितना समय योग में बैठते हैं उतना समय तो कुछ सार्थक परिणाम हमारे हाथ में लगे। उतना समय बाबा कहते जो मन डिस्टर्ब ना करे एक घंटा, तो वो कब होगा, जब पहले से हम मन की प्लानिंग बना के रखेंगे। अगर बिना प्लानिंग के हम बैठ जाते तो प्लानिंग सारी प्लेन हो जाती है, मन भी प्लेन हो जाता है, फिर जैसे आए थे योग में वैसे उठ के चले जाते हैं, फिर अगले दिन आएंगे फिर वैसे उठ के चले जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा भी योग करते हैं तो कुछ उसका ठोस परिणाम हमारे हाथ में होना चाहिए, कुछ बदलाव हमको महसूस होना चाहिए। तो किसका आशीर्वाद है, ये रोगी आत्माओं का। और किसका आशीर्वाद चाहिए, किस किस का चाहिए, प्रकृति के पांचों तत्वों का हो गया, और हाँ जीव जंतुओं का, है ना, संसार में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, जानवर हैं, उनके साथ उनकी संवेदनाएं भी, उनकी संवेदनाओं को समझना है, है ना, उनके साथ भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। कहीं हम हेल्प कर देते हैं पंछियों की, या फिर पंछियों को दाना डालते हैं, या कई गायों को चारा खिलाते हैं, ये भी छोटे छोटे काम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अच्छा, फिर कई संसार में वृद्धाश्रम होते हैं, वृद्धाश्रम में कोई किसी को पूछने वाला नहीं होता है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा, एक बीके बहन ने कैसे वृद्ध आश्रम वालों को बुला के उनका सम्मान किया, तो इतने खुश हो गए, उनको घर में भी इतना सम्मान नहीं मिला होगा, तो कितना आशीर्वाद मिला होगा वो, संसार में जिनको पूछने वाला नहीं है। और छोड़ते कौन है, जो बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो ही छोड़ते हैं अपने माँ बाप को, तो वो भी एक आशीर्वाद का बल मिलता है। तो अपने जीवन को इतना आशीर्वादों के बल से इतना भर देना है कि निरंतर जैसे हमारा जीवन निर्विघ्न एक रस अवस्था में चलता रहे, स्थैर्य अवस्था में चलता रहे। तो ये था आशीर्वाद का बल। अभी आज की मुरली पर डिस्कशन करेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, बाप का नाम बाला करने के लिए तीन बातें बताई, कौन कौन सी, ईमानदारी, वफादारी और सच्चाई सफाई। और क्या क्या कहा बाबा ने, आज गीत कौन सा था, आज की दुनिया को क्या हो गया भगवान, क्या हो गया आज की दुनिया को, क्या हो गया, बीमार हो गई है ना, अंतिम श्वासों पर चली गई है ना, इसी भारत की महिमा कितनी थी और अभी क्या हो गया है, इस भारत को क्या हो गया है। तो इस भारत में क्या था पहले, सोने हीरे के महल थे, अब क्या हो गया, इसमें ईंट पत्थरों के महल है ना, वो ईंट पत्थर भी कितने महंगे हो गए हैं, और बांस सोने के ढेर भी कितने बड़े बड़े होंगे, और सब फ्री है, कोई उसमें लालच ही नहीं है, है ना। आज बाबा ने बताया था ना, कौन सताता तुम बच्चों को, नहीं आज के मुरली में था, पांच विकार तो सताते हैं लेकिन विशेष एक था उसमें, लोभ तुम बच्चों को बहुत सताता है, तुमको सुस्त नहीं बनना है, है ना, था कि नहीं है, जितना सर्विस करेंगे उतना ताकत बढ़ती जाएगी। और संजीवनी बुट्टी कौन सी बताई, खुशी, और थी कुछ, बोला सबको पैगाम दो, एक बाप को याद करो, यही संजीवनी बुट्टी है ना। और दो मंत्र दिए थे, कौन से, मन मनवा मध्या जीव, शमशान में जाके सेवा करनी है, हाँ तो किसको सुनाएंगे क्यों? क्योंकि वहां फुर्सत होती है ना, भले शमशानी बैराग होता थोड़े समय, लेकिन वहां भी समझा सकते। आजकल ताश खेलते हैं समय बदल गया अभी, है ना, क्योंकि वो मरते देख देख के भी आदमी इंसान नॉर्मली सामान्य हो गया कि ठीक है मरते तो है ही, एंजॉय करते हैं अभी। तो बाबा कहते हैं, और किसका एग्जांपल दिया, किस कौन सा फूल का एग्जांपल दिया जी बाबा ने? गुलाब का फूल क्या करता है? खाद में पैदा होता है और खुशबू देता है ना। तो हम बच्चों का भी क्या कर्तव्य है, संसार में रहते भी जितनी परिस्थितियां आए, कैसे भी सरकमस्टांस आए, लेकिन हम अपनी खुशबू को छोड़ा ना, हम अपनी खुशबू से सबके जीवन को महकाते रहें ना। और क्या कहा बाबा ने? हाँ जी हाँ, फिर याद भी रहना चाहिए किसके लिए बांधी है गांठ, वो भूल जाते हैं, वो तो वही बच्चे भूल जाते हैं बार बार, इसे तो बार वो जो मुरली सुनाते हैं आके। और क्या कहा? हाँ, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का ये बहुत मुख्य अभ्यास है, सारे दिन में इस अभ्यास को बहुत प्राथमिकता से करना जरूरी है, क्योंकि ये अभ्यास हमको, जितना हम न्यारे बनने का अभ्यास करते हैं उतना बाबा के प्यार का अनुभव होता है। संडे 18 तारीख की मुरली में बाबा ने कहा ना, ये परमात्म स्नेह क्या करता है, तुमको सहज ही देवान से परे ले जाता है। ये परमात्म प्यार बाप के खजानों से संपन्न बना देता है, ये परमात्म प्यार तुमको फरिश्ता बनने की अनुभूति कराता है, ये परमात्म प्यार तुमको कर्मेंद्रियों से न्यारा कर देता है, कर्मेंद्रिय जीत में रहते, मन जीते जग जीत, ये सारी निशानियां थी 18 तारीख की मुरली में। तो मन के भाव को समझना है, मन हमारा कोई साधारण नहीं है, मन के अंदर हमको ऐसे वैसे संकल्प नहीं भरने हैं कि कोई कुछ भी आए और डाल के चला जाए, ऐसा थोड़ा नहीं है। इतना ऊंचा मन है, भगवान का दिया हुआ ये दी हुई अमानत है, तो इस अमानत को हम कितना तरीके से प्यार से संभाल के रखें और इससे काम लेना और इसको बेस्ट फ्रेंड बनाना है। माइंड इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये सोचना है कि मन मेरा सबसे अच्छा मित्र है, क्योंकि मन तो धोखा देता है, अब इसी मन से हमको अच्छी तरह से काम लेना है। तो इसको अपना मित्र बना के अच्छे अच्छे संकल्पों की रचना रचनी है, अच्छे अच्छे योग के वाइब्रेशन, योग के एक विजन क्रिएट करके उसमें मन को बिजी रखना है, ताकि मन में उसमें रमणीकता है, नवीनता है, मन ऊर्जावान बना रहे, मन में शक्ति बढ़ती रहे, बलशाली बन जाए वो। तो मन को जो है ना बिजी करके रखना है, नहीं तो जिन की कहानी है, अगर बिजी नहीं रखेंगे तो कच्चा खा जाऊंगा। तो मन भी जिन की तरह ही है, अगर मन को हमने बिजी नहीं रखा तो क्या होता है, जो भी पहले की बुराइयां भर के रखी हैं, पुराने संस्कार स्वभाव हैं, वो हमको तंग करते रहेंगे, डिस्टर्ब करते रहेंगे। तो अपने मन में जितना बाबा के ज्ञान का खजाना है, उन खजानों को, प्राप्तियों को सामने रखना है। बाबा ने कहा ना कि अलग अलग तरीके से याद करो, 18 तरीके की मूल्य में था ना, प्राप्तियों से, संबंधों से, बाप के साथ संबंध है, टीचर का संबंध है, सखा का संबंध है, तो इतने सारे संबंधों से बड़े प्यार से उसको अपना बना के रखो, तो ताकि मन को कुछ नवीनता आए मिले, नहीं तो मन तो क्या है, शैतान खाली मन शैतान का घर है, तो मन को अभी शैतान का नहीं, क्या किसका घर बनाना है, बाबा का घर बनाना है। कितना अच्छा विचार है, बाबा का घर है ये मन, है ना। इस मन के अंदर क्या है, स्वयं भगवान बैठने के लिए हमको ऑफर करता है, तो मन कितना साफ स्पष्ट सुंदर होना चाहिए, एक कितना प्योर होना चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए, जिस हार्ट के ऊपर स्वयं भगवान ऑफर कर रहा है कि मैं आकर इस पर बैठूंगा, तो इसको कितना स्वच्छ बनाना चाहिए, है ना। इस और जहाँ भगवान आके बैठ गया तो बहुत सारे काम तो हो ही पड़े, किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं है। तो जो हमको मिला हुआ है मन, बाबा का घर है ये, और इस घर में कौन है, बाबा के साथ साथ पूरा मधुबन इस घर के अंदर है, सारे मधुबन के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, चारों धाम के वाइब्रेशन समाये हुए हैं, ऐसे सोचना है। हर ब्राह्मण आत्मा के प्योर वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं मुझ आत्मा में, वो घर के परम धाम के वाइब्रेशन प्योर वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं, सूक्ष्म बदन के सारे प्योर वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं, वो स्वर्ग सतयुग की दुनिया के पूरी निर्विकारिता के वाइब्रेशन समाते जा रहे हैं। तो सारा वाइब्रेशन के तल पर काम करना है, वाइब्रेशन के तल पर हम काम करेंगे तो हमको एक अलग सी अनुभूति होगी, और इस संसार के फिर संसार में सबके साथ रहते रहते हम सबसे न्यारे रहेंगे, किसी की बात भी हमको प्रभावित नहीं करेगी, नहीं तो छोटी मोटी बातों में प्रभावित हो जाते हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोलता रहा, वो तो बोलते रहेंगे, क्योंकि सबके स्वभाव संस्कार अपने अपने हैं, किसी के मुंह तो पकड़ नहीं सकते हैं, सबकी अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ही अपने अपने संकल्प चलते हैं सबके, जो अटेंशन रखता है उसके व्यवहारिकता में परिवर्तन आता है, बोल में परिवर्तन आता है, उसकी दृष्टि में परिवर्तन आता है, वृत्ति में परिवर्तन आता है, और अटेंशन नहीं रखते हैं तो पहले जैसा रहता है। तो हम अगर वाइब्रेशन के तल पर काम करते हैं तो हमारे से निकलने वाले वाइब्रेशन भी हमारे समन संपर्क में आने वाली आत्माओं को भी कुछ ना कुछ नवीनता की अनुभूति कराएंगे। उनको महसूस होगा कोई कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए, और करना तो है ही एक दिन सबको, लेकिन अंत में होगा पश्चाताप हमारे हाथ में लेगा अगर हमने नहीं किया तो। और वो नंबर सारे समय को मिलेंगे, तो समय से पहले अगर हम कर लेंगे तो हमें जो इस जीवन में जीवन मुक्ति का मजा अभी अनुभव करना है वो इसी जीवन में जीवन मुक्ति का, अर्थात वो स्वर्ग के जो संस्कार हैं, जो हमारे असली ओरिजिनल संस्कार हैं, देवता संस्कार हैं, वो महान संस्कार हैं, वो निर्विकारपने के संस्कार, वो दातापन के संस्कार हैं, वो संभाव दृष्टिकोण के संस्कार हैं, ऊंच कुल के संस्कार हैं, उनका अनुभव तो हमको अभी करना है, संगम पर ही करना है। बाबा ने बताया ना, ब्रह्मा बाबा ने जो जीवन जिया संगम पर कैसे जिया, जीवन मुक्ति का जीवन जिया। बाप भी तुम बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं, ऐसा फरिश्ता बनाना चाहते हैं। बच्चे होमवर्क तो करते हैं लेकिन कभी कभी वो अटेंशन देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो बाबा सदा काल देखना चाहते हैं बच्चों को फरिश्ता स्थिति में, तो हमको ये विशेष अटेंशन देना है। और क्या कहा आज के मूल्य में, हाँ श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, क्यों, शोभता नहीं है। हाँ बच्चा है, और वैसे बच्चों को भी बाबा कहते लेकिन वो वाला बाबा, बड़ा बाबा नहीं कह सकते। हाँ और क्या कहा, और क्या कहा, हाँ देवता धर्म बड़ा सुख देने वाला है। देखो अगर 10 लाइनें भी मुरली की याद है ना तो जीवन में खुशी बनी रहेगी, बहुत हैं 10 लाइनें भी, देखो कितनी लाइनें याद रखी हैं। और क्या कहा, क्यों सुख देने वाले देवता धर्म, क्योंकि सारी प्रारब्ध सुखदाता बाप से हमने ली है, है ना। और क्या बताया, चलाओ चलाओ दिमाग, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, निकालो निकालो कुछ, नहीं तो सब शॉल के अंदर लपेट के रखा हुआ है। हाँ सन्यासी हाठ योगी हैं, तुम बच्चे राजयोगी हो, वो विकारों को जीतने के लिए दवाइयों का उपयोग करते हैं, तुम बच्चे बाबा की याद से करते हो, है ना। तुम्हारी पवित्रता का बल है, और पवित्रता का बल है जहाँ वहाँ वो सबको आकर्षित करती है, इसलिए सन्यासियों को भोजन भी जंगल में पहुँच जाता है क्योंकि पवित्रता का बल है। तो कितनी बड़ी बात है, वो है हठ योगी, तुम हो राजयोगी, तो देखो कितना पॉइंट है, कितना विस्तार हो जाता है इसका। वो मांगते, वो एक ही खिड़की से लेते हैं, अर्थात एक बार लेते हैं। जो सच्चे सन्यासी होते हैं ऊपर देखते भी नहीं है किसने दिया कैसे दिया, जो मिला एक बार दिया ले लिया, दोबारा मांगते भी नहीं है। हमें भी किसी से मांगना नहीं है, है ना, उस आज शायद कल के मूल्य में भी आएगा, मांगने की तुमको जरूरत ही नहीं है। क्यों मांग, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो, तो मांगना नहीं है किसी से भी। हाँ और क्या कहा, खांसी। तो बाबा की कितनी बातें होती, तो आप पहले था आशीर्वाद के बल, कितने आशीर्वाद के बल थे, तो सबसे पहले तो बाबा का आशीर्वाद दो, इसको योग से जोड़ना है, रोज फील करना है, निरंतर चलते फिरते या जब भी मौका मिले तुरंत जैसे आसमान से हाथ आया और सीधा बाबा का हाथ मेरे सिर के ऊपर, और पूरा ये बॉडी लाइट की बॉडी होगी और पूरी बाबा की शक्तियाँ मेरे सारे शरीर में इसमें आ गई, मुझात्मा में इसमें आ गई, मैं भी लाइट हो गई, मैं आत्मा लाइट, मेरा शरीर लाइट, मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र, मेरा शरीर संपूर्ण पवित्र, ऐसे शुद्ध संकल्पों की एक माला बनानी है। तो लंबे समय तक उसका हमको अनुभूति करनी, महसूसता करनी है, नहीं तुम्हारे वाइब्रेशन कैसे चेंज होंगे। तो एक बाबा का आशीर्वाद लेना, दूसरा स्वयं का आशीर्वाद डेली, जो भी हमारा संपूर्ण रूप है उसको बार बार विजुलाइज करना, उसका आह्वान करना, उसको देखना है कि वास्तव में मैं ही हूँ ये, जैसे बाबा को साक्षात गई मैं ही हूँ सामने, है ना। तो ऐसे हमें अपने भी संपूर्ण रूप का आह्वान करना है, देखना है कि कितनी हमारी समानता है, अभी उसमें दूरी कितनी है, कहाँ तक हमारी दूरियाँ भी उसमें बनी हुई हैं, तो स्वयं का भी आशीर्वाद। तीसरा ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद लेना है, है ना, क्योंकि बड़ा जरूरी है, हमको सारे हिसाब किताब तो हमारे किसके साथ में है, ब्राह्मणों के साथ में भी है, लौकिक के साथ तो है ही है, ब्राह्मणों के साथ में भी है। तो हमारे जो भी हिसाब किताब है खुशी खुशी चुकतू करने के लिए सबके साथ मिलजुल कर चलना, सबको स्नेह देना, सम्मान देना, एक दो को आगे बढ़ाने की भावना रखना, कल्याण की भावना रखना, अपनेपन की भावना रखना, ये सारी चीज़ें अगर रखेंगे तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद हमको स्वतः मिलता रहेगा, मांगने की जरूरत नहीं है। फिर समय पर सहयोग देना, किसी की बात सुनना, ध्यान से सुनना, उसका सल्यूशन देना, समस्या का समाधान करना, ये सब ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेने की टिप्स हैं, ठीक है। तो तीसरा आशीर्वाद हो गया ब्राह्मणों का आशीर्वाद, चौथा आशीर्वाद लौकिक बालों का भी आशीर्वाद, है ना, क्योंकि जिस परिवार में हम रहते हैं वहाँ भी सबके साथ सामंजस्य बिठाते हुए, सबकी बात को सुनते हुए, सबके साथ मिलजुल कर चलते हुए, उनको भी खुशी का अनुभव कराते हुए, उनको भी बाबा की अच्छी अच्छी बातें सुनाते हुए, हमेशा नहीं सुनानी, कई बार अच्छी नहीं भी लगती हैं, है ना। था ना मुरली में ज्ञान की बात अच्छी हजम नहीं होती है, पिछले संडे की संडे मुरली में था। अगर वो बीमार होते हैं तो क्या होता है, एक तो शेकिंग होती है, फ्लू की बीमारी था ना, दो कारण है मुख्य माया आने के कारण, कौन से, एक तो फेल हो जाते हैं और दूसरा फ्लू की फील करते हैं तो फ्लू की बीमारी थे। और उसमें पांच बातें बताई थी, कौन सी, एक तो मन हलचल में हो जाता है, जीभ कड़वी हो जाती है अर्थात कड़वे बोल बोलते हैं, फिर सर्दी लगती है अर्थात ठंडे हो जाते हैं, फिर गर्मी लगती है अर्थात गर्म क्रोध करते हैं, कमजोरी आ जाती है, तो ये सारी बातें हैं, तो वो बीमारी हमको नहीं लगे, तो इन बीमारियों से हमको लौकिक बालक को मुक्त करना है। ऐसे नहीं हमको खाली ज्ञान से, कुछ भी सहयोग से उनको बाबा का अनुभव करा सकते हैं उनको, तो लौकिक बालों का भी आशीर्वाद बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट था प्रकृति का आशीर्वाद, है ना, प्रकृति के साथ भी हम ऐसा खिलवाड़ ना करें जो उसको दुख मिले, है ना। नहीं तो कई बार देखो सवेरे सवेरे चलते हैं, चप्पल जोर जोर से टक 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 कर चलती है, फरिश्ते कैसे चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, वो चप्पल चेंज कर देनी चाहिए अगर ठक ठक करते तो, है ना। मम्मा कैसे चलती है, हम केवल मम्मा के जो सुनते हैं वो केवल सुनने सुनाने तक की थोड़े उनके महात्म्य हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करने के लिए, नहीं तो सुनाएंगे मम्मा ऐसे करती थी, दादी ऐसे करती थी, हम क्या करते हैं, वो केवल सुनाने तक नहीं है, हम भी तो खुद उनके जैसा बने ना, उनके पद चिन्हों पर चलें, उसी हम वंशावली के हैं, है ना। तो प्रकृति का भी हमको आशीर्वाद हमको लेना है, और किसका लेना है, जीव जंतुओं का आशीर्वाद लेना है, अर्थात उनको भी दुख ना पहुंचाए। तो ऐसे हम किसी तरीके से भी अनेक प्रकार के आशीर्वाद अगर हम उनका बल जमा करते हैं तो हमारे उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, उन्नति का मार्ग खुल जाता है और हमारा जीवन निर्विघ्न मन चलता रहेगा। तो ये ब्राह्मण जीवन बड़ा छोटा सा जीवन है, इस छोटे से समय में छोटे से संग में उनको इतना सुख जमा करना है, इतना सुख आत्मा में भर लेना है कि वो सुख आगे आधा कल्प चलता रहेगा, क्योंकि सब स्वर्ग में थोड़ा सुख जमा करेंगे, अभी जितना जमा करेंगे, जमा करने का तो टाइम अभी है, बैंक तो अभी खुला है, फिर थोड़े दिनों में बंद होने वाला है, तो इस थोड़े से समय में हम जितना जमा कर लें, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन जन, जितना भी हम जमा कर लें तो हमारे ना केवल हमारे लिए फायदेमंद बल्कि सराय ब्राह्मण परिवार के लिए, पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए, पूरा विश्व का उद्धार, क्योंकि बाबा ने कहा तुम बच्चे हो, पूर्वज हो, तो हमारा एक एक संकल्प जो है पूरी सृष्टि को, पूरी कायनात को, पूरे संसार को प्रभावित करता है, प्रकृति को प्रभावित करता है। तो हमारे संकल्प छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, अच्छे अच्छे पावरफुल शक्तिशाली संकल्प होने चाहिए, अव्यक्त संकल्प होने चाहिए, अलौकिक संकल्प होने चाहिए, किसी को सुख देने वाले संकल्प होने चाहिए, पवित्रता के संकल्प होने चाहिए। तो हमें अपनी निरंतर प्रकृति का अगर होना रखना है तो थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और उसके लिए सारे सार में एक ही शब्द में कि जो डेली मुरली है उसके ऊपर अच्छी तरह से काम करना है। डेली मुरली में से 8-10 पॉइंट उसको चिंतन करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, ताकि वो हमारे संस्कार बन जाए, नहीं तो धीरे धीरे दूसरी बातें हमारे अंदर घुन की तरह खाती रहेंगी अंदर अंदर, और बाद में देखेंगे तो अंदर से खोखले के खोखले निकलेंगे, बाहर से तो अच्छे दिखेंगे लेकिन अंदर से हम खोखले दिखेंगे, फिर बाबा भी क्या बोलेंगे, फिर सब ब्राह्मण परिवार के सामने खड़े होंगे तो क्या बोलेंगे, दिखने में तो अच्छे लगते थे लेकिन अंदर से क्या निकला, है ना। तो हम अंदर बार से एकदम संतुष्टता का अनुभव हो, पुरुषार्थ हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे, स्वयं के ऊपर हम अटेंशन रखें, तो ताकि बाबा भी हम बच्चों की जो बाबा हम बच्चों के प्रति बाबा की आशा है उनको हम पूरा कर सकें। ओम शांति।